ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद अध्याय संख्या 6। अध्याय का नाम है पहला द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या 8। दूरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अपयातिहि। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की दूरापुरेण जो कभी पूरा नहीं होता, कामेन भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा से, मोहेन मोह से, च भी बलीयसा जो बलिष्ठ तथा तुर्जे हैं, शेषम जीवन के बचे हुए वर्ष, गृहेषु गृहस्थ जीवन में, सक्तस्य अत्यधिक आसक्त का, प्रमत्तस्य पागल का, अप्याति व्यर्थ बिता देता है, ही निसंदेह जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपनी भक्ति को भक्ति में नहीं लगा पाता। तात्पर्य, यही जीवन के 100 वर्ष का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ होते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्ता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचे रहते हैं, लेकिन वे भी ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह ग्रस्त बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ग्रस्त जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके बन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अचितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता, वह कुकर शुकर या बिल्लियों के शरीर को पूरा धारण करता है। अतः काम इच्छाओं तथा इंद्र तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त होता है। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक प्रसंग चल रहा है। प्रहलाद महाराज अपने रिसेस पीरियड में, जब लंच टाइम होता था, शांडोर अमरक चले गए अपने घर में, तो अपने सहपाठियों को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो पिछले अभी तक 7 श्लोक निकल चुके हैं। एक एक श्लोक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पावरफुल उसका तात्पर्य। तो आज का तात्पर्य सुना आपने, तो एक बार श्लोक दोहरा दें। दूरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्याप्यातिहि। दूरापुरेण जो कभी पूरी नहीं होती, ऐसी कामों को इच्छाएं कामेन, और मोहेन मोहित होकर, च बलीयसा बहुत दृढ़ता से बलवान से, शेषम गृहेषु सक्तस्य जो बचे कुछ जीवन है उसमें घर में आसक्त हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रमत्तस्य पागल है, अपयाति ही अपना सारा जीवन निस्संदेह व्यर्थ गवा देता है। और तात्पर्य भी बड़ा स्वतः स्पष्ट था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को इशारा ही काफी है। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत खोल के सब कुछ बताया है। प्रहलाद महाराज भी सब कुछ स्पष्ट बता रहे हैं कि 100 वर्ष हैं, 50 वर्ष सोने में, निकल जाते हैं। अगर 100 वर्ष की आयु है, पहले 20 वर्ष खेलने कूदने में, आखिरी के 20 वर्ष बुढ़ापे बीमारी में, बाकी बचे कितने वर्ष? 10 वर्ष। जो शेष 10 वर्ष बच जाते हैं गृहेषु सत्तस्य, घर के कामों में, घर के बच्चों में, पत्नी में, अपने गाड़ियों में, अपने मकान में इतने आसक्त होते हैं कि उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाते भक्ति के लिए और जीवन समाप्त हो जाता है। ये पूरा जीवन की कहानी। फिर भी थोड़ा सा डाउट रह जाए तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये समझ लीजिए ये मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की, है ना? कितना होगा ये लगभग? 2 फीट, है ना? तो 50 वर्ष सोने में खत्म। अब रह गया इतना, पहले था 2 फीट, अब रह गया 1 फीट। अब इसमें से पहले के 20 वर्ष ये खत्म, आखिर के 20 वर्ष ये खत्म, ये बचे 10 वर्ष एक घर के काम काजों में खत्म। अरे ताली बजाने की बात नहीं है, ये कोई चमत्कार थोड़ी ही है। ताली तब जाना जब छड़ी से कुछ कबूतर निकाल दिया हो, ये कोई नया जीवन। ये तो छड़ी ऐसे गई, चलो एक जीवन हुआ, दूसरा जीवन भी ऐसे ही खत्म। एक जीवन, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, हर जीवन ऐसे खत्म। तो ऐसे को व्यक्ति को क्या पागल बताया गया कि क्या इतना सुंदर जीवन मिला है, इसके बाद ऐसे व्यर्थ चला गया। इसलिए प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा प्रारंभ की, कौमार आचरित प्राप्य, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना मनुष्य जीवन का, एक क्षण भी। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में एक ब्लैक कलर की टी शर्ट आती है और उस पर लिखा होता है बींग ह्यूमन। है किसी के पास ये टी शर्ट? बींग ह्यूमन, ह्यूमन बींग नहीं, बींग ह्यूमन। तो बींग ह्यूमन अच्छी बात है कि मनुष्य है हम, लेकिन बींग ह्यूमन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूइंग ह्यूमन, मनुष्य की तरह जीवन जिए। बींग ह्यूमन तो आपका शरीर से लग रहा है कि आप ह्यूमन बींग है, कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ व्यवहार हो सकता है ह्यूमन बींग जैसा ना हो, इसलिए कहने की जरूरत पड़ी आई एम ह्यूमन बींग, बींग ह्यूमन। लेकिन बींग ह्यूमन से अच्छा है डूइंग ह्यूमन। इस मनुष्य शरीर को पाकर हम मनुष्य शरीर वाले कार्य करें। तो डूइंग ह्यूमन मतलब क्या है कि मनुष्य वाले कार्य है क्या? क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा ही नहीं करनी, ब्रह्म के स्तर पे कार्य भी करना है। केवल ये जानना ही आवश्यक नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा के स्तर पर कार्य भी करना है। मनुष्य जीवन तब प्रारंभ होता है जब हम ब्रह्म के स्तर पर कार्य करेंगे, आत्मा के स्तर पर कार्य करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हमारे इस मोमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, यहाँ खाली जगह पर स्पेस खाली पड़ा है, अंदर आ सकते हैं प्लीज, आगे आ जाइए। तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हमारे मोमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, टू बी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावना भावित होना। फिर शिष्य ने पूछा, इसका क्या अर्थ है कृष्णा भावना भावित होना? प्रभुपाद ने बोला, पुटिंग फिलॉसफी इन एक्शन, फिलॉसफी को कार्यान्वित करना। दर्शन जो हम पढ़ते हैं, जो लेक्चर सुनते हैं, जो प्रभुपाद के परपट्स पढ़ते हैं, इस पे एक्शन लेना, इस पे कार्य करना, उससे हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर हम इसके प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करें। मनुष्य जीवन में हम अपने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को सही ढंग से उपयोग करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। ये इसलिए मिला है, राइट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस, अपना सही चॉइस करें। हर कार्य हमारा सही विकल्प के साथ होना चाहिए, सही संकल्प के साथ होना चाहिए, केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, सोच समझ कर कार्य होना चाहिए, जिससे हम अपने असली घर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। अगर मनुष्य जीवन का उपयोग हमने इन चीजों में नहीं किया तो व्यर्थ गवा दिया। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं हमारा असली घर है भगवत धाम, तो एक कृष्ण कॉन्शियस मोमेंट है, ये एक फैमिली मोमेंट है, पारिवारिक। अक्सर लोगों को लगता है कि नहीं 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 नहीं, इस कौन में गए तो परिवार से अलग हो गए, है ना, परिवार छूट जाएगा, ये परिवार को तोड़ने वाले लोग हैं। नहीं, हम होम मेकर्स हैं, है ना। प्रभुपाद ने बोला कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिससे पूरा विश्व रह सकता है, और अगर हमने सही ढंग से प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन किया तो हम अपने असली घर में जाएंगे, बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान के घर में। वो हमारा असली घर है, वो हमारा असली घर है। और यहां के घर को प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, ग्रहम अंधकूपम, अंधा कुमे के समान है। और जो असली घर है वो क्या है, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हमारा असली घर कैसे बना हुआ है, चिंतामणि से है। यहां पर किसी का घर बना हुआ ज्यादा इटालियन मार्बल है तो पत्थर ही चिंताओं से, मणि की चिंताओं से बना हुआ है घर। के हर व्यक्ति चिंतामणि है ना, मणि की चिंता में डूबे हुए। लेकिन भगवत धाम कैसे बना हुआ है, चिंतामणि, मणियों से बना हुआ है, ज्वल से। और कल्प वृक्ष है, वहां पे कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत ही नहीं, चॉकलेट चाहिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, चॉकलेट टक से आ जाएगी। यहाँ पे चॉकलेट के लिए, खाने के लिए कितने इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, छोटी सी चॉकलेट के लिए, टॉफी के लिए भी। वहां पे कल्प वृक्ष है, जो इच्छा है पूरी हो जाएगी, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सब ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे रहते हैं सब। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली तो खत्म है ना, विवाह हुआ सब अलग अलग अलग, और सब दुखी, परिवार को मेंटेन करना इतना बड़ा संघर्ष, वहां पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ही नहीं है, सब खुश आनंद में, भगवान बंसरी बजाते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, बस कोई फैक्ट्री नहीं, कोई लेबर स्ट्राइक नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई वैट की प्रॉब्लम नहीं, है ना, और क्या क्या चल रहा है, कोई रेड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई ब्लैक मनी व्हाइट मनी कुछ नहीं, सब कुछ आनंद। ये हमारा असली घर, घर का मतलब ही है जहां आप आराम से सुकून से रह सके। यहां तो घर के बाहर भी चिंता, घर के अंदर भी चिंता, तो ये असली घर है नहीं। इसलिए ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है घर में जाने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। तो उसके लिए जानना पड़ेगा ये भौतिक जगत क्या है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। असंगम ही अरे पुरुषो, जिनसे कोई संबंध नहीं है, जहां पे कोई संबंध नहीं है तो वहां परिवार कैसे बन सकता है। तो इसलिए अगर हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेंगे तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जितनी मात्रा में हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करेंगे उतनी ही मात्रा में कृष्ण अपने आप को रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे, है ना। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है वो परमात्मा को जीत लेता है, जिसका मन भी काबू नहीं है वो यही इस संसार में भटकता रहता है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन से देखा होगा, भक्ति करते करते जब हम कई बारी इंद्र तृप्ति करते हैं तो हम भक्ति में स्थिरता और गंभीरता खो बैठते हैं, लगता कि नहीं लगता। किसी दिन जरूरत से ज्यादा हमने प्रसाद ले लिया, जरूरत से ज्यादा सो गए, कुछ उल्टे सीधे कार्य कर लिए, तो हम भक्ति में स्थिर नहीं रह पाते, भक्ति में गंभीरता हमारी कम हो जाती है ना। तो इंद्र तृप्ति करके हम भक्ति नहीं कर सकते, है ना। इसलिए अपने इंद्रियों को संयमित करना बहुत जरूरी है। जो हमारी जब हम इंद्र तृप्ति करते हैं तो हम अपने आप को भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान और हमारे बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाता है। ये सबने हमें महसूस किया होगा, व्यक्तिगत सबका रियलाइजेशन होगा। और जब हम बहुत ज्यादा इंद्रियों को तृप्त करने में लगते हैं तो हमारे कृष्ण की सेवा करने की जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाती है, सेवा की भावना समाप्त हो जाती है ना। तो कैसी है ये इंद्रवृत्ति, दूरापूर्ण, ये कभी भी इंद्रियां हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे। कभी सोचा हम क्यों करते हैं इंद्र तृप्ति, हम सोचे तो कारण क्यों आ गया है, जब हमारे के अंदर कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जब फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हम इंद्र तृप्ति करते हैं, नेट पे सर्फिंग करेंगे, पजल्पा करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम इंद्र तृप्ति करते हैं, और इंद्र तृप्ति करने के बाद और फ्रस्ट्रेशन, दूरा पूर्ण, कभी ये कभी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, इस पूरे विज्ञान को समझें और असली घर जाने के लिए प्रयास करें। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो उनके सेक्रेटरी श्रुतकीर्ति प्रभु ने पुष्ट कृष्ण प्रभु से उनको मिलाया। पुष्ट कृष्ण प्रभु का क्या नाम था भौतिक ध्यान नहीं, हमें पहली बार ही मिलाया। तो पहली बार एक युवा से मिले, जब वो वापस चले गए तो प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी को बोला, श्रुतकीर्ति को, मैं इसको सन्यासी बनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, तुम्हें मालूम है मैं अमेरिका क्यों आया हूँ? बोले क्यों? बोले आप सबको सन्यासी बनाने के लिए। बेचारे घबरा गए श्रुतकीर्ति प्रभु, कहते कुछ तो बन गए, कुछ घबरा रहे थे, उनका विवाह करा दिया और उनको बोला कि एक संतान उत्पन्न करो, पत्नी और बच्चे को वृंदावन छोड़ो और सन्यासी बनो। कईयों ने कर लिया। कुछ और घबरा रहे थे तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, नहीं बनाना सबको सन्यासी है। प्रभुपाद इसलिए आया हूँ, है ना। हम भी प्रभुपाद के मोमेंट में हैं तो प्रभुपाद हम सबको सन्यासी बनाना चाहते हैं, है ना। डर गए हम सब। तो गीता में सन्यासी की परिभाषा क्या दी हुई है? अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। ऐसे कर्म करने की कला हमने सीखनी है कि बिना कर्म फल पर आश्रित हुए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, सब कुछ भगवान को अर्पण करें, वो सन्यासी है। तो इस चेतना को विकसित करना है, तो उसके लिए इस भौतिक जगत से हमें अनासक्त होना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा तमाहं प्रबद्धे। वैराग्य विद्या सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। कैसे? इस भौतिक जगत से हमें वैराग्य, जब तक इस भौतिक जगत को हम समझेंगे नहीं, हम इसमें अनावश्यक ही आसक्त हुए फिरेंगे। तो ये बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन काबू में नहीं है, मोहवश बहुत ही स्ट्रांगली वो अपने परिवार में आसक्त होता है, जबकि वो परिवार असली परिवार नहीं। तो ये परिवार की आसक्ति होती क्या है? कोई कह सकता है कि आसक्ति होना गलत बात थोड़ी है। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, माता पिता से, बहन भाइयों से, पत्नी से आसक्त होना कौन सी गलत बात है? तो आज आप चर्चा करेंगे कि वास्तव में आसक्ति नहीं है, ये बहुत गहरी चाल है, बहुत गहरी चाल है, बहुत मोहित करने वाली बात है। ये हम सब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, वास्तव में क्या है कि जब हमारी इंद्रियां और मन संयमित नहीं होते तो ये हमारे झूठे अहंकार की सेवा करते हैं, झूठे अहंकार का पोषण करते हैं। हम कृष्ण से विमुख होकर इस भौतिक जगत में आए और हमने झूठे अहंकार से अपने आप को शरीर समझा, फॉल्स ईगो से, गलत पहचान की। फॉल्स ईगो झूठे अहंकार का अर्थ है कि हम अपने आप को कृष्ण से अलग देखते हैं, हम अपने आप को कृष्ण का अंश नहीं मानते और अपने आप को ही कर्ता और भोक्ता मानते हैं। लेकिन जीव के स्वरूप में बदलाव नहीं होता, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, स्वरूप तो वैसे का वैसा ही रहता है, जीवात्मा में कोई विकार नहीं आता। लेकिन अपनी गलत पहचान के कारण हम अपने आप को भोक्ता और कर्ता मानते हैं। अब जीवात्मा बिना संबंध के जीवित नहीं, बिना संबंध उसका क्या अस्तित्व है? उसको संबंध तो कहीं ना कहीं तो बनाना है। कृष्ण से संबंध तोड़ के हम यहां आ गए, अब कहीं तो संबंध बनाना है ना। तो संबंध बनाने के लिए हमें अपना विस्तार करना पड़ेगा। किसी किसके साथ संबंध बनाएंगे? इनके साथ, इनके साथ, तो अपना विस्तार करना पड़ेगा। तो अपना विस्तार करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता है, इसलिए पुरुष को स्त्री की, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता अनुभव होती है संबंध बनाने के लिए। पुरुष स्त्री के साथ जुड़ता है। स्त्री का अर्थ क्या है? विस्तार। पुरुष और स्त्री में पहले आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन जब संबंध बन जाता है तो बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। आकर्षण और आसक्ति में अंतर है। पहले तो हृदय में आकर्षण है, पुंसा स्त्री मिथुन भावम एताम, एक दूसरे के प्रति मैथुन का आकर्षण है। तयो मिथो हृदय ग्रंथिम आहु, लेकिन जब मिलते हैं तो हृदय में ग्रंथि बन जाती है, कांठ बन जाती है। जब तक मिले नहीं आकर्षण है, मिलते हैं तो बहुत जबरदस्त आसक्ति हो जाती है। जैसे पेड़ के नीचे की जड़ें बड़ी गहरी हो जाती हैं, इतनी आसक्ति की जड़ें गहरी हो जाती हैं। फिर अब पुरुष है, स्त्री है, अब क्या चाहिए? अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तय, घर चाहिए, क्षेत्र चाहिए, रिश्तेदार, धन, पुत्र इत्यादि। फिर क्या है? जनस्य मोहम हम अमाम, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बड़ा एक एम्पायर बन गया, अपना किंगडम हो गया, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी सल्तनत हो गई एकदम पूरे, है ना, मेरा राज्य हो गया। अब ज्यादा पूरा ये परिवार हमारा फैल गया, विस्तार हो गया, अब इसमें वो जो व्यक्ति है अब किससे ज्यादा सबसे ज्यादा आसक्त होता है, उसकी आसक्ति किससे सबसे ज्यादा होती है, उसका परिवार है, सब कुछ है, सबसे ज्यादा आसक्ति उसकी किसके साथ होगी, किससे होगी, बच्चों से, पोतों से, पत्नी से, लड़की से, लड़के से, किससे होगी, हैं? हाँ जी, धन से, किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है, अपने आप से, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, अपनी रक्षा करना इस भौतिक जगत का सबसे पहला सिद्धांत है, अपने आप को संतुष्ट करना इस भौतिक जगत का सबसे पहला सिद्धांत है। तो वो कहेगा, पत्नी को बोलेगा आई लव यू, वो पत्नी को इसलिए प्रेम कर रहा है क्योंकि वो मेरे से संबंधित है। संसार की दूसरी स्त्रियों के पति भी उसके अंदर भोगने की इच्छाएं हैं, लेकिन उनसे वो आसक्त नहीं है, आसक्त किससे है, पत्नी से, क्योंकि पत्नी मुझसे संबंधित है, ये पत्नी मेरे अहम को संतुष्ट करती है, इसलिए मैं इससे आसक्त हूं। बच्चों से भी मैं क्यों आसक्त हूं, क्योंकि बच्चे मुझसे संबंधित है, पड़ोस का बच्चा आएगा उसको थोड़ी इतना करेंगे, अपने बच्चे के लिए मैं 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन ले लूंगा, पड़ोस का बच्चा आएगा अंकल 25,000 दे दो, चल भाग यहां से, क्यों मैं 25,000 भाग यहां से, चल अपने बाप के पास जाओ, है ना, क्यों फालतू में ऐसी क्यों बात कर रहे हो भाई, मेरा आपसे क्या संबंध है, मेरा बच्चा है मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, जो चीज मैं के साथ कनेक्टेड है उससे मैं आ सकता हूं, समझिए। तो अपना सुख सब देखते हैं, यहां तक कि गर्भवती स्त्री गर्भपात करा लेती है, अगर बच्चे को पैदा करना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, आजकल तो डिसीजन ऐसे ही लेते हैं, नहीं मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी, मैंने सोचा बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्ट कर दो, डॉक्टर कहते हैं ठीक है डिसीजन ले लो जल्दी से, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, मेरी नौकरी में बाधा पड़ेगी, अभी हमारे पास इतना धन नहीं है हम बच्चे को पाल सकें, पहले ही एक लड़की है दूसरी लड़की होने वाली है, मार दो, कोई सोचता भी नहीं है, मार देते, क्योंकि अपना सुख देखना है, अपनी कन्वीनियंस देखनी है ना। तो इस ढंग से हर कोई केवल अपने को संतुष्ट करने के लिए कहता है मैं परिवार से आ सकता हूं, और प्रभुपाद इसको बोलते थे एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, फैला हुआ, और ये फैलता रहेगा, कोई परिवार तक है, कोई देश तक चला जाएगा, मुझे भारत बहुत प्रिय है ना, भारत क्यों, कि भारत मेरा देश है, और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, हालांकि वो फांसी के फंदे को चूम कर फांसी का फंदा अपने गले में लगा रहा है, प्रभुपाद के हिसाब से वो क्या कर रहा है, भागवतम के हिसाब से वो क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है। अजीब सी बात है, हम तो उसको हीरो मान रहे हैं, लेकिन वो अपने अहम को संतुष्ट कर रहा है, मैं और मेरा भारत, अपने भारत के लिए मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूं, अहम मैं संतुष्ट हो रहा हूं उसका, बात डाइजेस्ट हो रही है, आप लोगों का हो जाए किसी बाहर जाके बोले मारेंगे पागल व्यक्ति है। जो व्यक्ति फांसी पे चढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, देश की आजादी के लिए एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। इसलिए कोई व्यक्ति देश से नहीं पूरे मानव समाज से आ सकता है, मैं मनुष्य सारे मनुष्य आसक्त है ना, इनकी मैंने सेवा करनी है, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं वो भी एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कोई मायावादी जितने मर्जी अस्पताल खोल ले उससे बेहतर कौन है, भक्ति सांसद ठाकुर बोलते थे मंदिर में आगे कोई घंटी बजा दे उसने ज्यादा अच्छा काम किया है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे उसके, क्योंकि उसने घंटी भगवान की प्रसन्नता के लिए बजाई है। तो ये जो कंसेप्ट है मैं और मेरा, इसके लिए हम अपने अहम को संतुष्ट करते हैं, पति पत्नी से इसलिए लगाव रख रहा है, आसक्त है कि वो उसके अहम को संतुष्ट कर रही है, पत्नी पति से इसलिए आसक्त है क्योंकि वो पति पत्नी के अहम को संतुष्ट कर रहा है, और जहां एक दूसरे को कोई अहम को संतुष्ट नहीं कर पाता वहां अलग हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, खत्म बात, कहां की आसक्ति कहां का प्रेम सब खत्म है ना। ये कहानी है संसार की हैप्पी फैमिली की। हैप्पी फैमिली वो है जहां पर कंबिनेशन स्ट्राइक हो जाए, दोनों एक दूसरे के अहम को संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो वो हैप्पी फैमिली है ना। जैसे गजेंद्र, बड़ी हैप्पी फैमिली थी गजेंद्र की, हथनी, बच्चे, मोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, हथनी थी, दोनों सब एक नाम संतुष्ट परिवार था। और सर चलो सब पिकनिक पे जाते हैं है ना, वॉटर गेम्स खेलने है ना, घुस के अंदर तालाब में और सब नहा रहे थे, आराम से मस्ती कर रहे थे। तभी मगरमच्छ आ गया, उसने गजेंद्र की टांग को पकड़ लिया, गजेंद्र सब भाग गए, चिंटू टिंटू करके सब भाग गए। और भाई गजेंद्र ने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा, क्योंकि उनसे संबंध है, वो संबंध है। सब भाग गए, सब अपने सेल्फ की संतुष्टि के लिए, आई की संतुष्टि के लिए, मैं और मेरा, मैं से है, मेरा मैं को संतुष्ट करेगा तो मेरा है, अगर मेरा मैं को संतुष्ट नहीं करेगा तो मेरा नहीं है, जाओ। तो ये फैमिली थोड़ी हुई, ये फैमिली लाइफ नहीं है, ये केवल सेल्फिशनेस है, इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है। लगेगा हमें अरे पिताजी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, पिताजी ने घर बार छोड़ के बाहर ही रहते हैं, ओवर टाइम करते हैं, खुद फटी हुई पेंट कमीज डाल के घूमते रहते हैं, हमारे नए नए कपड़े भेजते हैं, आप कैसे कहते हैं वो सेक्रीफाइस नहीं करते, सेल्फलेस है, देखो बिल्कुल। वो पिताजी इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कौन है? उनके पत्नी और बच्चे हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी और बच्चे, मैं उनके लिए कर रहा हूं, पत्नी और बच्चे, क्योंकि वो मेरे हैं, तो मेरे को, मेरे आई को, मेरे अहम को वो संतुष्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये आप लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके तो कृष्ण कॉन्शियस परिवार है, इसलिए समझ नहीं आ रही आपको। ये तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं जो कि ग्रह मेधी है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए बात एप्लीकेबल नहीं होती है ना। तो ये मन और इंद्रियां संयमित ना होने के कारण हम झूठे पारिवारिक जीवन में आसक्त हो रहे हैं और अपना सारा समय व्यर्थ गवा रहे हैं। यहां से क्या होगा कारण? अंते नारायण स्मृति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा जीवन बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। अगला जीवन हमें कुकर शुकर का मिल सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? अंते नारायण स्मृति के लिए प्रारंभे नारायण स्मृति करनी पड़ेगी, बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करना सिखाना पड़ेगा, बचपन से ही प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि बचपन से ही, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग है किस लिए? जो एक विद्रोही जीवात्मा इस संसार में आया हुआ है, उस विद्रोही जीवात्मा के अंदर भोगने की प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो भगवान से विमुख है उसको भगवान के उन्मुख करना है, 180 डिग्री पूरा घुमाना है, तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बचपन से ही, जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, बचपन से ही उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि धीरे 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 वो भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए। और इस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को बोलते हैं वर्णाश्रम, और वर्णाश्रम की शुरुआत होती है ब्रह्मचारी आश्रम से। तो अगर किसी ने एक अच्छे ढंग से ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले ली है, वो ही एक अच्छा ग्रस्त बन सकता है, वही अच्छा ग्रस्त बन सकता है। जिसने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ली, वो एक ग्रह मेधी बनेगा, वो ऐसे झूठे परिवार से आसक्त रहेगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग शुरू होती है 5 वर्ष की आयु से, है ना। उसमें क्या होता है कि शुरू से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और सेल्फलेस होना सीखो, अपने लिए जीना नहीं, गुरु की प्रसन्नता के लिए जीना सीखो। ट्रेन किया जाता है पहले समय में, प्राचीन काल में, कि गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाएगा, और जब तक गुरु बोलेंगे नहीं वो प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, और गुरु जान के उसको खड़ा रखते थे उसकी ईगो को, उसके अहंकार को काटने के लिए। अगर शिष्य को डांटा जाता था तो शिष्य आर्गुमेंट नहीं करता था, क्यों फालतू में डांट रहे हो। आजकल अमेरिका में तो ऐसा है कि आप बच्चे को थोड़ा सा भी डांट दो तो बच्चा सीधा पुलिस को फोन कर देता है। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि उन एक यहाँ की माता जी थी, भक्त थी, वो गए, उनका बेटा अमेरिका में था, तो बोला आओ मम्मी कभी आओ यहाँ पे, वो चली गई वहाँ पे, तो उनका पोता था, तो हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए काम के लिए। अब वे माता जी भक्त हैं, इंडिया से हैं, छोटा सा पोता था, उसने कुछ बदतमीजी की, उसको डांट दिया, डांट दिया, उसने पुलिस को बुला लिया और बेचारी माता जी पुलिस स्टेशन में, और मैंने बुलाया अपने बेटे को, देखो क्या हो गया, मैं तो जल्दी से मुझे वापस भेजो। पोते को थोड़ा डांटा क्या, उसने पुलिस को बुला लिया। ये कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, और इंडिया में यही कल्चर आता जा रहा है। तो पहले गुरु जान डांटते थे उसके अहंकार को कम करने के लिए, तो शिष्य कभी आर्गुमेंट नहीं करता था। ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दी जाती थी कि सब कुछ गुरु की प्रसन्नता के लिए, पर स्त्री को माता कह के पुकारना, माता के दृष्टि से देखना, ये अभ्यास प्रैक्टिस है ना, ऐसे एक चरित्रवान व्यक्ति बनता है। और फिर अगर अपने इंद्रियों को सही में कर नहीं पाता, गुरु की आज्ञा लेके वो गृहस्थाश्रम में जाता था। तो गृहस्थाश्रम में जाने के बाद भी ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की सही ढंग से सेवा करेगा, अपने माता पिता की सही ढंग से सेवा करेगा। अगर इंद्रियतृप्ति ही जीवन का लक्ष्य रहेगा तो होता क्या है, मैरिज के बाद पुरुष माता पिता को कम इंपॉर्टेंस देना शुरू करता है, क्योंकि अब माता पिता उसके अहम को इतना संतुष्ट नहीं करते जितने की नई पत्नी करती है। माता पिता बूढ़े हैं, नई पत्नी यौवन है, युवती है, तो उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। माता पिता बेचारे खांसते रहते हैं, उसकी उनकी वैल्यू तब मालूम चलती है जब एक नया बच्चा आता है, चलो इसको संभालो, हम दोनों बाहर जाएंगे। क्या है, सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई देता है, ये क्या है, इतना घोर स्वार्थ, और फिर भी हम इसी परिवार में आ सकते हैं। क्यों? अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने का हमने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। तो अति आवश्यक है, जो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाएगा वो अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखेगा, और अपनी पत्नी को भी वो देवी की दृष्टि से देखता है, भोग की दृष्टि से नहीं। कितना संयम चाहिए। मनुष्य जीवन का अर्थ है विकसित बुद्धि। विकसित बुद्धि प्रभुपाद कहते हैं प्रदर्शित होती है आत्मसंयम से। जो जितना ज्यादा आत्मसंयमी है उसका मतलब उसकी बुद्धि उतनी काम कर रही है। अगर बुद्धि होने के बाद हम आत्मसंयमी नहीं है तो पशु समान है। तो ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण अति आवश्यक है, कैसे हम गुरु के लिए जीवन जिए। कोई बोले कैसे कह सकते हैं, सारा कार्य करूं भोक्ता मुझे होना चाहिए? नहीं, भोक्ता कृष्ण को गुरु को होना चाहिए। ये मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं है। अनादि कितने जीवन हमने बिता दिए भोग करते करते, अब बोला जा रहा नहीं गुरु और कृष्ण के लिए जीवन जियो, तो संभव नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। तो एक ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, शास्त्रों में बताया गया। एक तो ट्रेनिंग है तप से तपस्या करके, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके, इंद्रियों मन को संयमित करके, तो एक ट्रेनिंग है। और दूसरी ट्रेनिंग है कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस। तो कृष्ण कॉन्शियस जो ट्रेनिंग है ये बहुत पावरफुल है, ये किसी भी व्यक्ति को ये महात्मा बना सकती है। शिला प्रभुपाद गए, हिप्पीस को प्रभुपाद जी ने महात्मा बना दिया। जैसे हम देखते हैं गांव से कोई व्यक्ति आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गवार है, उसको ट्रेनिंग देके हम एक शिक्षित सभ्य व्यक्ति बना सकते हैं। हम सर्कस में जाते हैं, पशुओं को भी ट्रेन किया जाता है आज्ञा का पालन करें, पशु भी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में हम प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने इंद्रियों मन को संयम करना सीख सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन आजकल क्या होता है, पहले तो 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल भेजा जाता था, आजकल 3 वर्ष की आयु से ही को एजुकेशन शुरू हो जाती है ना, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं 3 वर्ष की आयु से ही, और जब तक है वो PhD नहीं कर लेता को एजुकेशन ही चलती है उसके। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे कोई आता है यूथ फोरम में 20-22 साल का लड़का, बहुत सौभाग्य से आता है, बोला बोलो ब्रह्मचारी बन जाओ। कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हैं व्यक्ति बताओ, 3 वर्ष से उसने को एजुकेशन किया है, फ्री मिंगलिंग विद गर्ल्स अपोजिट सेक्स है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब उल्टी सीधी पिक्चरें देख ली, सब उल्टे सीधे कार्य कर लिए। अब उसके प्रभुपाद के पुस्तकों के संपर्क में आता है, बोला हाँ ब्रह्मचारी बनना चाहिए। कितना देखिए कितना मुश्किल काम है ना। वो पहले था बिल्कुल, वहां तो बाहर जी क्या है, लोग टी शर्ट डालते हैं यू नो आई गेट एंग्री लिखा होता है ना, आई गेट एंग्री, इसका लोग वो करते हैं कि यस आई गेट एंग्री, ये एंग्री यंग मैन है ना, ये इमेज होने चाहिए, एंग्री यंग मैन, गुस्सा भरा हुआ जिसके अंदर है ना, इनकलाबी व्यक्ति, रिबेलियस व्यक्ति, वो लगता है कुछ है। तो वैसे वो लेकर चलता है और यहां तो बोले जाता है त्रिनाद भी सुने चाहिए एकदम फटी कैसे कोई कर पाएगा। इसलिए ये ब्रह्मचारी आश्रम क्या है, ज्यादा से ज्यादा एडल्ट रिफॉर्मेशन प्रोग्राम, जब बिगड़े हुए एडल्ट हैं, युवा लोग हैं, उनको सुधारने का प्रोग्राम, जब थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दो बस, क्या कर सकते हैं। और 5 वर्ष के वापस तो नहीं ला सकते ना, चल दोबारा से 5 वर्ष के हो जाओ, ये तो कर नहीं सकते। अब 20-25 साल में जब भी आया, जो बेस्ट कर सकते हैं ठोका पेटी करके उसको, जो ब्रह्मचारी सर मुंडवा दिया, कपड़े ये डाल दिए, तिलक लगा दिया, चलो कुछ लगे हम ब्रह्मचारी ऐसा है, और कुछ सच्चाई आपके सामने। इसी ढंग से अगर कोई फैमिली वाला पारिवारिक जीवन जुड़ता है, वो तो क्या 5 वर्ष निकल गए उसके, 20 वर्ष भी निकल गए, 30 भी निकल गए, 45 का हो गया, पूर्ण रूप से मैं और मेरा में आ सकता, पूर्ण रूप से, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, वो उसको कोई किसी ने किताब दी पकड़ो, वो उसकी आंखें खोलती है, क्या है मेरे बच्चे मेरी पत्नी ये नहीं है, ऊपर है, सब जाना है मेरे पिता ये है वो है, ये मेरा घर नहीं है, सब भोक्ता राम यज्ञ तप, सब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो माला जप करनी शुरू करता है। और उनके लिए सोचिए आप कितनी मुश्किलें फेस कर रहे होंगे इसमें, कि मेरा काम धंधा, एक बढ़िया व्यक्ति, वैश्य व्यक्ति है, इतना उसने एक्सपेंशन किया, फैक्ट्री प्लानिंग की, किसके लिए, अपने लिए, खानदानी पुश्तैनी काम चल रहा है, अब बोला पुश्तैनी काम नहीं, भगवान के लिए काम करना है, ये कौन सी बात है ना, कितना चेंज अपने आप को करना है। इसलिए हम संघर्ष करते हैं भक्ति में, मालूम है करना चाहिए, कर ही नहीं पाते, ट्रेनिंग नहीं है। आपको मुश्किल आती कि नहीं आती, मैं कुछ बताऊं, मालूम है हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हाँ प्रभु जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, हर कार्य भगवान के लिए, हर कार्य भगवान के लिए, है ना, लेकिन जब करने आते कर ही नहीं पाते। गुरु के लिए जीना चाहिए, गुरु के लिए, गृहस्थ आश्रम गुरु सब कुछ है, फिर बोलते प्रभु जी लगता ही नहीं गुरु से कोई आ सकती है ना, अपने रिश्तेदारों से याद आ सकती है कि भक्तों से याद आ सकती है, पत्नी से आ सकती है, गुरु से आ सकती है, किससे आ सकती है, मैं और मेरा, है ना। 50% देते हैं क्या, नहीं देते, 50% क्या बात करो, हम खाएंगे पिएंगे क्या, नहीं होना चाहिए, नहीं कर नहीं पाते क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। तो गलती किसकी है, हमारी गलती नहीं है, पूरा ये सिस्टम इतना करप्ट हो गया पूरा कलयुग में, ना हम कोई परफेक्ट ब्रह्मचारी बन सकते हैं, ना हम परफेक्ट गृहस्थ बन सकते हैं, तो क्या किया जाए। और इसीलिए हम भक्तों के बीच में सही संबंध नहीं बन पाते, इसीलिए हमें भक्ति का असली आनंद नहीं आ पाता, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, करना हम क्या चाहते हैं, कर पाते नहीं क्योंकि प्रशिक्षित नहीं है उस ढंग से। तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है, पुराने आयु वापस तो आ नहीं सकती, तो कैसे करना चाहिए, लेट्स मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, जो हमारे पास अभी है उसको तो हम सही उपयोग करें, जितना जीवन बचा है। ये कृष्णा कॉन्शियस बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, इसको हम अब हम समय व्यर्थ ना गवाएं, अच्छे ढंग से करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय से बचे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहकर भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ें, जब अच्छे ढंग से करें। प्रभुपाद कहते हैं, लिखते हैं भगवत के परपट में, वन हु इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस देन ही विल नॉट हैव एनी टेस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस बनने का प्रयास करें, वास्तव में देखें मनुष्य जीवन ऐसे निकल जाएगा, ऐसे पता भी नहीं चलेगा, तो हम समय बर्बाद ना करें। और अपने आगे वाली जनरेशन के लिए हम देखें कि हम उनको कितनी ट्रेनिंग दे सकते हैं, खुद भी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे, आगे आने वाली जनरेशन को भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार रहे। मनुष्य जीवन के लिए सबसे ऊपर उसके जो बड़ी कृपा हो सकती है वो ये है कि उसको मैथुन जीवन से अनासक्त किया जाए, सबसे बड़ी कृपा, द बेस्ट बेनिफिट विच कैन बी गिवन टू ह्यूमन बीइंग इज टू डिटैच हिम फ्रॉम द सेक्स लाइफ, सबसे बड़ी कृपा, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, मैथुन जीवन। इस भौतिक जगत को मैथुन आगार बताया गया है, और जब कोई बद्ध जीव मैथुन करता है तो वो कृष्ण के प्रति अपनी सर्वोत्तम द्वेष का प्रदर्शन करता है, तो किसी ढंग से उसको डिटैच किया जाए, तो डिटैच के लिए पूरा वर्णाश्रम धर्म है, और इसके लिए ब्रह्मचारी ट्रेनिंग और इस सब आगे की ट्रेनिंग है। और हम लोग
चाहे हमारी कितनी भी आयु हो, हमें इस कृष्णा भारत आंदोलन में कितने ही वर्ष क्यों ना बीत गए हो, हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा हमें ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये प्रशिक्षण है, ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे एक क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है, जैसे आप लोग भक्ति रिक्शा भी लेते हैं, ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इससे भक्तों का हम ध्यान रख सकते हैं। और एक इनफॉर्मल, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, काउंसलिंग करते हुए हम उनको समझा सकते हैं सूक्ष्म बातें, ऐसे नहीं, ऐसे व्यवहार करना है, इस सिचुएशन को ऐसे टैकल करना है। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है, कंटिन्यूअस, लेकिन तभी पॉसिबल है जब हम सीखने को तैयार हों। अगर हम सीखने को तैयार नहीं, हम ऐसे हैं, सब कुछ फिसल जाएगा। ऐसे रहेंगे, जानेंगे अपनी स्थिति को कि कितना भगवान से आसक्ति हो रही है। गोपालकृष्ण महाराज ने जब दीक्षा पर लेक्चर दिया था, उन्हें बोला जब हमारे शरीर को कुछ बीमारी होती है, रात को नींद नहीं आती, जाग जाते हैं, मेरी बीमारी का क्या होगा। उसी तरह की चिंता होनी चाहिए, इतनी आयु बीत गई, अभी तक भगवान से आसक्ति नहीं हुई। देखा था ना ये सब निकले हुए, आयु कैसे खत्म हो गई, 50 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष, कुछ भी नहीं बचा। तो अभी तक भगवान से आसक्ति नहीं हुई, इस चीज की चिंता होनी चाहिए। कैसे आसक्ति करनी है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। कैसे सेल्फलेस होना है, प्रशिक्षण चाहिए। कैसे भक्तों के बीच में व्यवहार करना है, प्रशिक्षण चाहिए। कैसे किसी ने मेरा अपमान कर दिया, व्यवहार करना है, प्रशिक्षण चाहिए। उसने मेरा अपमान किया, मैंने भी सुना दिया उसको, देखी जाएगी ऐसी की तैसी, है ना। मैं भी कोई वो थोड़ी हूं, जानते नहीं मैं माहौल में पूरा फेमस था, मेरे पिताजी भी फेमस थे, मैं भी फेमस हूं। ऐसी सुनाई मैंने, देख लिया, ठीक है। साधारण दुनिया साधारण तरीके से बड़ा स्मार्ट आपने बिहेवियर किया, नहीं, भगवान की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से बड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। किसी ने हमारी प्रशंसा की, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, तब हम भगवतधाम जाने के लायक होंगे। ऐसी अवस्था में हमको भगवतधाम, गलती से नारद मुनि जी ले भी गए, भगवान के शोध भगवान जाकर उत्पात मचा देंगे हम। गोपियों में लड़ाई करा देंगे, आपस में कंफ्यूजन करा देंगे, कहां से कोई व्यक्ति आ गया, ये ना सब जगह इन्फेक्शन फैला दिया इसने। तो इसलिए बिल्कुल ओके, टेस्टेड हो गया, हमें जाना है यहां से। तो क्या करना चाहिए, आप लोगों से निवेदन है, आप क्या चाहेंगे, जो आपकी आगे वाली संतान है उसको प्रशिक्षण मिले या ना मिले। कितने लोग चाहेंगे आपकी जो संतान है उनको पूर्ण अच्छा प्रशिक्षण मिले, ठीक है। देखिए भगवान देख रहे हैं सबको, तो अगर आप लोगों का ऐसा सपोर्ट रहा और आप हमें आशीर्वाद देंगे, तो हम पूरा इस पंजाबी बाग मंदिर में और पूरे दिल्ली में एक अच्छा ट्रेनिंग का कल्चर ला सकते हैं। आपको जानकर भी खुशी होगी, अभी हम अप्रैल में ब्रह्मचारी, अगर कोई एक दिन के लिए बन जाए उसको उपक्रमा ब्रह्मचारी बोलते हैं, कोई 3 दिन के लिए भी ब्रह्मचारी बन सकता है, कोई 1 दिन के लिए भी ब्रह्मचारी बन सकता है, कोई आजीवन भी ब्रह्मचारी बन सकता है। इतनी छूट दी गई है शास्त्रों में, भैया 1 दिन तो बन जाओ ब्रह्मचारी, उसको बनते हैं उपक्रमा ट्रेनिंग। हम लोग अभी अप्रैल में 1 महीने का, 1 दिन को 1 महीना कर दिया हमने, उसका उपक्रमा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो भी ट्रेनिंग ले तब विवाह करें। भागवतम में 2 ऐसे राजाओं की कथा आती है जो बहुत अटैच थे पारिवारिक जीवन से, एक दक्ष और एक राजा प्राचीन परिषद। राजा प्राचीन परिषद बहुत ही कर्मकांडी व्यक्ति था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, पशुओं को मारता था, लेकिन उसने अपने पुत्रों को प्रचेतस को भेजा, जाओ तपस्या करो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले, और उनके पुत्रों ने, प्रचेतस ने पानी के नीचे 10,000 वर्ष तक तपस्या की शिव जी की आज्ञा का पालन करके, और बाहर निकलकर उन्होंने फिर विवाह किया और आगे गृहस्थी चलाई। और प्राचीन परिषद को नारद मुनि प्रचार करने गए, और नारद मुनि ने ऐसा प्रचार किया कि राजा प्राचीन परिषद ने, अभी तक उनके पुत्र वापिस नहीं आए थे तपस्या करके, अपना राजपाट मनिस्टर्स को देख के भाग गए, वानप्रस्थ नहीं रहना। इतना आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ट्रेनिंग लेना। दक्ष ने 10,000 संतान उत्पन्न की और बोला जाओ आगे जनसंख्या बढ़ानी है, लेकिन पहले ट्रेनिंग लेके आओ, पहले तपस्या करके आओ, अपने आप को शुद्ध करो। 10,000 लड़के गए, नारद मुनि उनका ब्रेन वॉश किया, ब्रह्मचारी बना दिया सबको। फिर से उसने 1,000 संतान उत्पन्न की, दोबारा से भेजा वहां पे। हमारे में से ऐसा हो, बड़ा भाई ब्रह्मचारी बन जाए, घर वाले छोटे भाई को इस्कॉन भेजते नहीं है, भैया मत जाना, तेरा भी यही हाल ना हो जाए, उसको संभाल के रखते हैं। अब दक्ष को देखो, दक्ष है वो एक्सपर्ट, 10,000 बेटे भेज दिए, अब 1,000 बेटे दोबारा ना भेजता, दोबारा से भेजे और वो भी वंचा ही बना दिया उन्होंने नारद मुनि ने। यानी कि वो क्यों भेज रहे थे कि बिना प्रशिक्षण के बिना तपस्या के गृहस्थ आश्रम में जाना बहुत ही रिस्की है। गृहस्थ आश्रम क्या पारिवारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम तो बनेगा नहीं, गृह में ही बनेगा। हाईली रिस्की, हाईली रिस्की। इसलिए जागे वाले आपकी संतान है, जो बच्चे हैं चाहे आप कितने भी साल के हैं, उनको आपको उत्साहित करना चाहिए कि आए ट्रेनिंग लें। अगर आपका सौभाग्य रहा तो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, अगर इतना बड़ा सौभाग्य नहीं हुआ तो वापिस आके विवाह कर लेंगे। बस क्या है इसमें, इसमें नुकसान तो है नहीं, कोई नुकसान वाली बात है? आप चुप हो गए एकदम। क्या है इसमें डरने की कौन सी बात है? ये सारा एक परिवार है, आप सोचिए सारा एक परिवार है। इस कंसेप्ट को लीजिए, चैतन्य महाप्रभु कहलाते थे मातृ भक्त शिरोमणि। अभी तक इस संसार के जितने भी मां के भक्त हुए हैं अपनी मां की पूजा करने वाले हैं, मां की पूजा, अपनी मां, मेरी मां शिरोमणि, सच्ची माता की इतनी पूज भक्ति करते थे वो शिरोमणि। संन्यास लेने के बाद वो मिले अद्वैताचार्य घर में, उनसे क्षमा मांगी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। सच्ची माता ने बोला बोलो कहां रहूं, सच्ची माता ने बोला तुम यहां रुक सकते हो रुक जाओ, लेकिन अगर दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी तो चले जाओ, क्योंकि तुम संन्यास ले लिए, तुम्हें जाना चाहिए, बट ऐसी जगह जाना क्योंकि जहां तुम्हारी खबर आती रहे। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे वृंदावन जाने की, उन्होंने बोला नहीं मां मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, क्योंकि नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक ही घर के दो कमरे हैं, लोग आते जाते रहते हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी, है ना। तो ये है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, खुद भी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार रहे, और सबसे अच्छा ट्रेनिंग हम दे सकते हैं दूसरों को दे सकते हैं अपने आचरण से, है ना। कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे हम क्लास में आते हैं, कैसे हम क्लास में बैठते हैं, हम कितने पंक्चुअल हैं, ये केवल आचरण से हम ट्रेनिंग दे देंगे, आचरण से ही हम अपना कल्चर सेट करते हैं। तो हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, अगर हम एक दूसरे को हमेशा से हेल्प करेंगे प्रशिक्षित होने में एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से हम भगवत हम वापिस जा सकते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। आप सोचिए जब हम प्रभुपाद जी के साथ नहीं जुड़े थे हमारा क्या जीवन था, हमें कितनी ट्रेनिंग मिल गई, मिलेगी नहीं मिले, पहले साधारण व्यक्ति मल त्यागने के बाद स्नान करता ही नहीं था, सोचा ही नहीं उसने कभी, उसके लिए क्या है, हंसता था ये क्या बात कर रहे हो ना। अब उसका हम देखते हैं, अब हम स्नान करते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी डालते हैं, माला करना सिखाया गया, ये सब ट्रेनिंग दी गई हमें, धोती डालना, प्रभुपाद जी ने कितना ट्रेन किया, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ अ लेक्चर इफ यू नॉट ट्रेनिंग देम, केवल लेक्चर देने से काम नहीं है, उसके बाद ट्रेनिंग देना, व्हाट इज द यूज। प्रभुपाद ने खुद ट्रेन किया, प्रभुपाद ने स्त्रियों को सिखाया साड़ी कैसे डालनी है, धोती कैसे डालनी है, सर कैसे मुड़ना है, तिलक कैसे लगाना है, छोटी छोटी ट्रेनिंग। कैसे हिप्पीज थे, कोई उनको नहीं थी नॉलेज, उनको संन्यास दे दिया, प्रभुपाद ने चार लोगों को संन्यास दिया, उनके साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद संन्यास तो मिले करना क्या है। प्रभुपाद ने बोला चैंट द षट गोस्वामी अष्टकम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो, ये ट्रेनिंग है। फिर उनको ट्रेनिंग दी, फिर वो सन्यासी बने, पूरे विश्व में प्रचार किया भागवत इस ढंग से। तो इस प्रोसेस में बहुत शक्ति है, हमें बहुत होपफुल प्रोसेस है, हमें कभी भी उम्मीद छोड़नी चाहिए, किसी भी अवस्था में है, किसी भी आयु में है, स्त्री हैं पुरुष हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजकल की हालत इतनी खराब हो गई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हमारे पिछले रविवार एक भक्त आए थे यूथ फोरम के, वो बता रहे थे कि उनके किसी कजन की शादी थी, और शादी से पहले उसने जो पहले लेडीज कीर्तन होता था ना, चम्मच बजा के होता था टक टक, उसके या तो अब डीजे वीजे आता है, तो डीजे में सबको बुलाया और सब ने इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, यू नो मोस्ट वेलकम। और वो बेचारा गया अपनी बहन को लेके वहां पे, तो सब खुलेआम मदिरा पान कर रहे हैं, खुलेआम, ये कि बहुत मतलब कि हाई उसकी कैटेगरी बात नहीं कर रहे हैं, हाई क्लास सोसाइटी मिडिल क्लास, सब लड़के लड़कियां बहन भाई इकट्ठे शराब पी रहे हैं, बहन और भाई इकट्ठे शराब पी रहे हैं और एक दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कल्चर आ गया, ये ऐसा कल्चर है। ऐसे में क्या ब्रह्मचार्य, क्या गृहस्थ आश्रम, ग्रह में भी पूरा जीवन बर्बाद है ना। हमारा एक और जान पहचान के है, माता जी हैं, अच्छी भक्त हैं, उनका बेटा 10 वर्ष का है, वो भी अच्छे उसके अभी तक लक्षण नजर आ रहे थे, वो क्रिकेट सीखने गया क्रिकेट एकेडमी में, तो एक दूसरे लड़के ने उसको गालियां दे दी, ये बेचारा चुपचाप खड़ा रहा है, कहता क्यों गाली देनी नहीं आती, कहता नहीं, कहे बुद्धू कहीं का गाली देनी भी नहीं आती। बेचारा रो तो घर आया, माँ के सामने रोने लगा, अब माँ को भी चिंता हो गई, ये बेचारा बाहर ही तो बुद्धू बना रहेगा, इसको गाली सिखानी चाहिए, क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रही। वो पूछ रहे मुझसे, प्रभु जी क्या करें इसका बताओ, इतना बेवकूफ है, ये लोग इसको गालियां देते हैं, चुपचाप खड़ा रहता है। तो इसका इसका क्या होगा, उनको अब ये चिंता हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी है, ये ऑड मैन आउट हो गया, इस बेचारे का क्या होगा। तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति है, तो हमें जानना चाहिए कि समाज इतनी बुरी हालत हो रही है, हम बच के नहीं रह सकते, तो हमें आपस में सबको मिलकर दुनिया को दिखाना है कि ऐसा जीवन संभव है। आज के युग में भी हम सादा जीवन जीकर, अच्छे विचारों को रखकर, एक ऐसा पारिवारिक जीवन दिखाकर ऐसा जीवन संभव है। जो ब्रह्मचारी आश्रम है उनको दिखाना है कि चल ठीक है, किसी भी अवस्था में आए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कलयुग में ब्रह्मचार्य का पालन करना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स करें और पूरे दूसरे कम्युनिटी के लिए एक आदर्श बन के दिखाएं, क्योंकि उनकी उम्मीद क्या है, जो गृहस्थ आश्रम है उनकी उम्मीद है ब्रह्मचारी आश्रम देखते हैं कि ये लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम है उनको इंस्पिरेशन देने के लिए अपने आप को सुधारना है, गृहस्थ आश्रम में उनको और इंस्पिरेशन लेके अपने आपको ट्रेन करना है, और दूसरे लोग जो पारिवारिक जीवन है उनको उनको उत्साहित करना है, और जो पारिवारिक जीवन में वो देखें कि उनके बच्चे भक्ति में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, सबसे बड़ा चैलेंज जो हम देखते हैं हमारे गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, बिल्कुल उल्टा उनके बच्चों की रुचि नहीं है भक्ति में, क्यों है ऐसा, आपस में मिलिए, चर्चा कीजिए, क्या कर सकते हैं कि आगे आने वाली संतान को हम प्रशिक्षण दें, एक अच्छा डिवोटी बनाए, भक्त बनाए। आश्रम कोई भी हो चिंता की बात नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ आश्रम बने, इस बात को निकाल दीजिए, हमारा प्रभुपाद कहते हैं हमारा सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट आश्रम कॉन्शियसनेस। आश्रम की परवाह नहीं, जिस आश्रम में बच्चा रहना चाहे उसको रहने दीजिए, लेकिन वो सबसे मुख्य बात क्या है, भक्त बने। कोई जबरदस्ती ना, तो जबरदस्ती हम उसकी विवाह करा सकते हैं ना, जबरदस्ती उसको ब्रह्मचारी बना सकते हैं, जैसे उसकी इच्छा है, जैसे उसका नेचर है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि उसको ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है और उसका भक्त बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स?
तो अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं पारिवारिक जीवन मतलब बिजनेस की तरफ, तो इससे बिल्कुल अलग, जबकि जो भक्ति है वो बताती है इसे अलग अनासक्त हो, जबकि वहां की तरफ हम कहते हैं कि मेहनत करेंगे तभी हम अम्बिशन ज्यादा रखेंगे, तभी मेहनत करेंगे तभी हम कर पाएंगे, तो ये दोनों डिफरेंट चलती है, तो इसको कैसे हम बैलेंस करें आपस में?
वही ना, वही प्रश्न है, कह रहे हैं कि जो फैमिली लाइफ का मतलब खूब तरक्की करो, मेहनत करो, एक्सपेंशन करो, और यहाँ बताया जा रहा है कि वाइंड अप करो। एक तरफ बोला वाइंड अप करो, एक तरफ करो एक्सपेंड करो, तो क्या करें, बीच का कौन सा रास्ता है? तो यही ट्रेनिंग की आवश्यकता है, संघ की आवश्यकता है, कैसे शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में उतारना है, सब कुछ करते हुए भी युक्त वैराग्य कैसे करना है, तो ये प्रशिक्षण चाहिए, कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है, कितना एक्सपेंड करना है, कितना रोकना है, बैलेंस करना, इसलिए इट्स रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। हाँ जी, तो इसके लिए प्रैक्टिकली गाइडेंस की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया करें किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आघात करने का प्रयास नहीं था, जस्ट गिव माय व्यूज, और कोई अपराध हो तो प्लीज क्षमा करें। वंशा कल्पत्रु वेचक सिंधु पतिता नाम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, निदाई गौ